एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने वाकई पीढ़ियों को छुआ है।
हाँ।
रामदास की बी हेयर नाउ, यानी यहाँ और अभी रहो।
और ये सिर्फ एक किताब नहीं, मतलब इसे एक अनुभव कहना ज्यादा सही होगा।
बिल्कुल,
इसने पश्चिमी दुनिया के तर्क और पूर्वी आध्यात्मिकता के बीच एक पुल सा बनाया।
हाँ, और आज की दुनिया में तो ये संदेश शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है
एकदम,
ना?
जहाँ ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है।
वही तो, हम सब मतलब या तो गुजरे कल की बातों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता करते हैं,
हाँ,
और ये किताब जैसे हमें जगा कर कहती है, अरे रुको, असली जिंदगी तो वो तो इसी पल में है,
यही
यहाँ और अभी।
बिल्कुल। तो इस सफर को समझने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले इसके लेखक को जानना जरूरी है।
हाँ, रामदास, जिनका असली नाम रिचर्ड एल्बर्ट था।
और उनकी कहानी भी मतलब कोई सीधी साधी नहीं है।
अरे बिल्कुल नहीं, सोचिए जरा, स्टैनफोर्ड से मनोविज्ञान में पीएचडी,
और हार्वर्ड में प्रोफेसर।
अकादमिक दुनिया के शिखर पर थे वो, पूरी तरह से पश्चिमी तर्क और विज्ञान में रचे बसे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, 60 के दशक में उन्होंने डॉक्टर टिमोथी लीरी के साथ,
हाँ, वो साइकेडेलिक वाली रिसर्च एलएसडी वगैरह पर,
बिल्कुल, वो जानना चाहते थे कि क्या ये पदार्थ चेतना का दायरा बढ़ा सकते हैं, क्या वो हमें उस अहंकार से परे ले जा सकते हैं जिससे हम खुद को जोड़े रखते हैं।
हालांकि वो रिसर्च काफी विवादास्पद रही,
हाँ, और इसी वजह से उन्हें हार्वर्ड से निकाल भी दिया गया था।
लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि इतनी बाहरी सफलता
अकादमिक पहचान,
और यहाँ तक कि चेतना विस्तार के वो कृत्रिम अनुभव भी उन्हें वो अंदरूनी शांति नहीं दे पाए।
एक खालीपन था, एक बेचैनी कि जीवन में कुछ और गहरा, कुछ और सच्चा होना चाहिए।
और इसी तलाश में वो भारत आए।
हाँ, 1967 में, और यहां उनकी मुलाकात हुई नीम करोली बाबा से,
महाराज जी,
जिन्हें वो प्यार से कहते थे।
हाँ जी,
और ये मुलाकात कह सकते हैं उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ साबित हुई।
कैसे, मतलब क्या हुआ ऐसा?
महाराज जी का वो सहज प्रेम, उनका वो अलौकिक ज्ञान, उसने उनके पश्चिमी तर्कवादी दिमाग को जैसे हिला कर रख दिया।
अच्छा,
उन्होंने उनके अहंकार की दीवारें गिरा दी, ऐसा कहा जाता है, और उन्हें एक नया नाम दिया, एक नई पहचान,
रामदास, राम का सेवक।
बिल्कुल। तो रामदास की खूबी यही है कि वो सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे, वो अपनी उस गहरी निजी यात्रा का अनुभव साझा कर रहे हैं।
एक सफल पश्चिमी बुद्धिजीवी से एक समर्पित साधक बनने का सफर।
हाँ, और इसी अनुभव ने उन्हें ये किताब लिखने का अधिकार दिया एक तरह से।
तो ये किताब बी हेयर नाउ
हाँ,
आखिर है क्या? जैसा आपने कहा, ये कोई आम किताब तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे आप शुरू से अंत तक पढ़कर शेल्फ पर नहीं रख सकते। ये एक आध्यात्मिक गाइड है।
जागृति का नक्शा,
हाँ, यह एक अनुभव जिसे महसूस करना होता है।
इसका सबसे बुनियादी विचार क्या है?
शायद सबसे क्रांतिकारी विचार ये है कि हमारे ज्यादातर दुख और बेचैनी की जड़ हमारा अपने अहंकार से चिपके रहना है।
अहंकार मतलब वो मैं की भावना।
हाँ, जिसे हम अपनी सोच, अपनी यादों, अपनी पहचानों से बनाते हैं। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी राय।
और ये हमें या तो अतीत में उलझाए रखता है या भविष्य में।
एकदम। और किताब कहती है कि सच्चे शांति, आजादी, खुशी, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान क्षण में मौजूद है।
यहाँ और अभी।
हाँ, यहीं टिककर हम अहंकार की बनाई जेल से बाहर निकल सकते हैं और अपनी असली पहचान,
उस शांत, स्थिर, साक्षी चेतना से जुड़ सकते हैं
बिल्कुल,
जो हमेशा मौजूद है हमारे अंदर।
तो ये किताब उन बड़े सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश है, जैसे मैं असल में कौन हूँ,
हाँ, और स्थायी खुशी कैसे मिले,
और जवाब मिलता है चेतना में बदलाव लाकर।
कैसे?
वो जो सोचने विचारने वाला लगातार बड़बड़ाता मन है ना, उससे हटकर इस पल के प्रति सीधी बिना किसी फिल्टर के जागरूकता में आकर।
इसका ढांचा भी तो बड़ा अनोखा है, सुना है।
हाँ, बहुत, जो रामदास की यात्रा को ही दिखाता है। पहला हिस्सा उनकी कहानी है।
फिर वो ब्राउन पेजेस वाला हिस्सा।
हाँ, वो तो किताब का दिल है, खुरदुरे भूरे कागज पर छपे चित्र, उद्धरण, विचार, जो दिमाग से ज्यादा दिल से समझे जाते हैं।
अच्छा,
तीसरा हिस्सा एक प्रैक्टिकल गाइड है, योग, ध्यान जैसी तकनीकों का कुकबुक कह लीजिए।
और चौथा?
चौथा हिस्सा आगे पढ़ने के लिए किताबों की एक लिस्ट है।
चलिए इन हिस्सों को थोड़ा और समझते हैं। पहला सेक्शन, जर्नी द ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनकी अपनी कहानी है।
हाँ, और ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये किताब की नींव है। ये बताता है कि एक हार्वर्ड प्रोफेसर जिसके पास सब कुछ था,
वो क्यों सब छोड़ के भारत आया।
बिल्कुल, ये उस अंदरूनी खालीपन की बात करता है जिसे बाहरी सफलता भर नहीं सकती।
इसमें वो LSD के अनुभवों का भी जिक्र करते हैं ना?
हाँ, करते हैं।
हम्म,
कैसे उनसे अहंकार के परे की चेतना की झलक मिली, सब कुछ जुड़ा हुआ महसूस हुआ।
लेकिन वो ये भी साफ करते हैं कि ये अनुभव टिकाऊ नहीं थे।
हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये अनुभव अस्थायी थे, दवा का असर खत्म और वो वापस उसी पुराने रिचर्ड एल्बर्ट में। स्थायी बदलाव की तलाश तो बाकी थे।
फिर भारत यात्रा, शुरुआती शक और संदेह भी रहे होंगे।
बिल्कुल, वे ईमानदारी से बताते हैं कि कैसे वो गुरुओं को परख रहे थे, जांच रहे थे।
और फिर महाराज जी से मुलाकात।
हाँ, वो क्षण, वो बताते हैं कैसे महाराज जी ने उनके मन की बातें जान ली, यहाँ तक कि उनकी माँ की मृत्यु का वो कारण भी, जो किसी को नहीं पता था।
अरे, ये तो तर्क से परे था।
एकदम, और महाराज जी के उस निस्वार्थ प्रेम ने उनके बौद्धिक किले को जैसे ढा दिया।
तो ये था रिचर्ड एल्बर्ट की मृत्यु और रामदास का जन्म।
कह सकते हैं ये सेक्शन पाठक को यकीन दिलाता है कि जो बदलाव किताब बता रही है वो संभव है, क्योंकि लेखक ने खुद उसे जिया है।
अब आते हैं उस दूसरे और सबसे मशहूर हिस्से पर, फ्रॉम बिंदु टू ओजस,
या अ कोर बुक, जिसे ब्राउन पेजेस कहते हैं। ये किताब का दिल है।
और वो भूरे खुरदुरे कागज पर क्यों?
जानबूझकर रिसाइकल किए भूरे कागज पर। इसे सीधा सीधा लीनियर तरीके से पढ़ने के लिए बनाया ही नहीं गया है।
अच्छा, तो फिर कैसे?
ये टेक्स्ट चित्र, मंडल और अलग अलग धर्मों, हिंदू, बौद्ध, सूफी, ईसाई के शक्तिशाली विचारों का एक कोलाज है।
मतलब कहीं से भी खोल कर पढ़ सकते हैं।
हाँ, आप कोई भी पन्ना खोलें और शायद वही संदेश मिले जिसकी आपको उस पल जरूरत हो। इसका डिजाइन ऐसा है कि आपका तर्कशील दिमाग थोड़ा पीछे हटे
और आप इसे सहज ज्ञान से महसूस करके समझें।
बिल्कुल, ये पढ़ने से ज्यादा अनुभव करने के लिए है।
इसकी मुख्य थीम क्या है?
चेतना की यात्रा, बिंदु यानी वो सीमित मैं या अहंकार,
उससे ओजस तक।
हाँ, ओजस यानी विस्तारित चेतना, परमात्मा से जुड़ाव एक तरह से। इसमें कुछ गहरे विचार हैं।
जैसे?
एक है साक्षी, द विटनेस का कॉन्सेप्ट। ये कमाल का है।
साक्षी भाव मतलब?
मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बिना उनसे जुड़े, बिना उन्हें अच्छा और बुरा कहे, बस देखना।
जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं।
बिल्कुल, आप बादल नहीं हैं, आप वो खुला आसमान है जिसमें ये सब हो रहा है। यही साक्षी भाव हमारी असली पहचान के करीब है।
वाह।
और
समय का भ्रम, किताब कहती है अतीत और भविष्य ये सिर्फ मन की कहानियां हैं।
असली चीज तो बस ये पल है, ये शाश्वत अब।
हाँ,
अतीत के पछतावे या भविष्य के डर में जीना ही दुख का कारण है।
और कर्म के बारे में भी कुछ है?
हाँ, कर्म। इसे सजा या इनाम की तरह नहीं समझाया गया है।
तो फिर?
इसे कारण और प्रभाव के एक प्राकृतिक नियम की तरह बताया है। हमारे विचार, हमारे काम, हमारी नियत, ये सब मिलकर हमारा अनुभव और आध्यात्मिक विकास का रास्ता तय करते हैं। और वो खूबसूरत लाइन, वी आर ऑल जस्ट वॉकिंग ईच अदर होम,
हम सब बस एक दूसरे का हाथ थामे घर लौट रहे हैं।
हाँ, मतलब अपने स्रोत, अपनी असली प्रकृति की ओर। ये हमें जोड़ता है, एक गहरी करुणा जगाता है।
ये ब्राउन पेजेस वाकई जानकारी देने से ज्यादा एक खास मानसिक स्थिति, एक अनुभव देने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ट्रांसमिट करने की। इसके बाद आता है तीसरा सेक्शन,
कुकबुक फॉर अ सेक्रेड लाइफ।
बिल्कुल, अगर ब्राउन पेजेस दर्शन है तो ये प्रैक्टिकल गाइड है। ये क्या से कैसे पर आता है।
अच्छा, मतलब इसमें तरीके बताए गए हैं।
हाँ, उन तरीकों या रेसिपी की बात करता है जिनसे हम यहाँ और अभी रहने की कला सीख सकते हैं। ये आध्यात्मिकता को रहस्यमयी बनाने की बजाय रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक बनाता है।
क्या क्या है इसमें?
इसमें योगासन है, पर सिर्फ कसरत की तरह नहीं,
तो फिर
शरीर को शुद्ध करके मन को शांत करने के तरीके की तरह, ताकि वो उच्च चेतना को ग्रहण कर सके।
और
प्राणायाम, सांस लेने की तकनीकें। हाँ, सांस पर ध्यान देना। सांस ही वो पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। इसे साधने से मन स्थिर होता है।
ध्यान के बारे में भी होगा?
जरूर, कई तरह की ध्यान विधियां, जैसे सांस पर ध्यान, मंत्र जाप, विजुअलाइजेशन, सबका लक्ष्य एक ही,
मन को भटकाव से खींचकर वर्तमान में लाना।
एकदम। इसमें आहार पर भी बात है। सात्विक यानी शाकाहारी भोजन की सलाह दी गई है।
क्यों?
इसलिए नहीं कि मांसाहार गलत है, बल्कि इसलिए कि हल्का सुपाच्य भोजन मन को शांत रखने में मदद करता है, जिससे ध्यान गहरा होता है।
और सबसे जरूरी बात शायद ये है कि दैनिक जीवन ही साधना है।
बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है। आध्यात्मिक अभ्यास आश्रम या मंदिर तक सीमित नहीं है।
बर्तन धोना, गाड़ी चलाना, ऑफिस का काम।
हाँ, हर काम को अगर पूरी जागरूकता से, पूरी उपस्थिति से किया जाए तो वो भी ध्यान बन जाता है।
इसमें सत्संग यानी साथ में साधना करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के महत्व पर भी जोर है शायद।
हाँ बिल्कुल, आपसी प्रेरणा और सहारे के लिए।
और आखिर में वो चौथा सेक्शन, पेंटेड केक्स डू नॉट सेटिस्फाई हंगर, चित्रित केक भूख नहीं मिटाते।
हाँ, ये असल में आगे पढ़ने के लिए किताबों की लिस्ट है, लेकिन इसका शीर्षक, जो एक ज़ेन कहावत है, अपने आप में एक चेतावनी है
कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल, आध्यात्मिकता के बारे में पढ़ना और उसे जीना दो अलग बातें हैं। शब्द सिर्फ इशारे हैं, मंजिल नहीं।
ये याद दिलाता है कि ज्ञान को अनुभव में बदलना जरूरी है।
हाँ, और इस लिस्ट में भगवद गीता, रामायण से लेकर ज़ेन, सूफी, ताओवादी ग्रंथों तक का जिक्र है। ये दिखाता है कि सत्य तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं।
तो इस पूरी गहन चर्चा से कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं?
मेरे लिए पहला और सबसे अहम है अहंकार का भ्रम और सच्चे स्व या साक्षी की वास्तविकता।
हम जिसे मैं समझते हैं, हमारा नाम, पेशा, विचार, भावनाएं, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं।
हाँ, एक पहचान करते हैं, लेकिन ये हमारी असली हस्ती नहीं है। दुख इसी झूठी पहचान से चिपके रहने से पैदा होता है।
तो असली यात्रा है इस कहानी से बाहर निकलकर उस शांत, प्रेमपूर्ण साक्षी को खोजना,
जो पर्दे के पीछे हमेशा मौजूद है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा संदेश है वर्तमान क्षण की शक्ति, बी हियर नाउ।
हाँ, हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता है
या भविष्य की योजनाओं में उड़ता है। किताब कहती है दोनों भ्रम है, क्योंकि वे अभी मौजूद नहीं है।
असली शक्ति, असली जीवन, असली शांति सिर्फ इसी पल में है।
जैसे ट्रैफिक में फंसे हों तो झुंझुनाने के बजाय अपनी सांस पर ध्यान देना।
हाँ, या कार के शीशे से बाहर दिख रहे नजारे को बस देखना। ये अभ्यास हमें मन के बनाए नाटकों से आजाद करता है।
तीसरा थीम जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगता है वो है दुख जागृति के लिए उत्प्रेरक है,
ग्रिस्ट फॉर द मिल।
हाँ, ये कमाल का नजरिया है। मतलब जीवन की मुश्किलें, दर्द, चुनौतियां ये सजा या गलतियां नहीं है,
बल्कि ये वो अनाज हैं जिन्हें पीसकर हमारी आत्मा निखरती है। एकदम, हर मुश्किल हमें ये देखने का मौका देती है कि हम कहाँ अटके हैं, हमारा कौन सा डर या लगाव हमें बांधे हुए हैं।
अगर हम दर्द से भागने की बजाय जागरूकता से उसका सामना करें
तो वही दर्द हमें बदलने का जरिया बन जाता है। जैसे नौकरी छूटने पर यह सीखने का मौका मिलता है कि हमारी पहचान सिर्फ काम से नहीं जुड़ी।
और चौथा महत्वपूर्ण विचार, गुरु एक दर्पण के रूप में।
हाँ, किताब गुरु की पूजा या उन पर निर्भरता की बात नहीं करती,
बल्कि
कहती है कि सच्चा गुरु एक साफ आईने की तरह होता है, जो शिष्य को उसकी अपनी दिव्यता भी दिखाता है
और साथ ही उसके अहंकार की उन परतों को भी उजागर करता है जिन्हें वो खुद नहीं देख पाता।
बिल्कुल, महाराज जी का उदाहरण यही दिखाता है। उनका प्रेम और उपस्थिति ही वो माहौल बनाते थे जहां रामदास का अहंकार पिघल सका।
और हाँ, वो बात भी अहम है, साइकोडेलिक से साधना तक का सफर।
हाँ, रामदास खुद इन पदार्थों के अनुभव से गुजरे थे, लेकिन वे साफ कहते हैं कि ये सिर्फ दरवाजे की एक झलक दिखा सकते हैं,
दरवाजा खोलकर अंदर नहीं ले जा सकते।
स्थायी बदलाव, सच्ची शांति सिर्फ साधना से आती है, यानी रोजमर्रा के अभ्यास से, ध्यान, योग, सजग जीवन।
ये कोई शॉर्टकट नहीं है।
नहीं, ये एक सतत यात्रा है।
किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो एकदम रुककर सोचने पर मजबूर करती
हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जितना शांत आप होते जाते हैं उतना ही अधिक आप सुन पाते हैं।
इसका मतलब है कि हमारे मन का जो अंदरूनी शोर है, लगातार चलते विचार, योजनाएं, फैसले,
वो हमें जीवन के सूक्ष्म संदेशों को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने नहीं देता।
शांति में ही सच्ची सुनवाई है।
और वो दुख चक्की के लिए अनाज है, सफरिंग इज ग्रिस्ट फॉर द मिल वाली बात।
ये वाकई नजरिया बदल देती है, मुश्किलों को कोसने के बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना,
अपने अहंकार को, अपनी कमियों को रगड़कर साफ करने का मौका। ये मुश्किलों को स्वीकारना आसान बनाता है।
एक और शक्तिशाली कथन है, एक मंत्र की तरह लगता है मुझे तो, मैं प्रेमपूर्ण जागरूकता हूँ।
आई एम लविंग अवेयरनेस। हाँ, ये सवाल का जवाब है कि मैं कौन हूँ।
खुद को अपनी भावनाओं, मैं दुखी हूँ या भूमिकाओं, मैं डॉक्टर हूँ से पहचानने की बजाय
अपनी पहचान उस जागरूकता से जोड़ना जो इन सबको देख रही है और जो स्वभाव से प्रेमपूर्ण है।
ये अभ्यास धीरे धीरे हमारी आत्मधारणा को बदल सकता है।
और पेड़ों वाला वो उदाहरण, वो कितना प्यारा है।
हाँ, जब आप जंगल में जाते हैं और पेड़ों को देखते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ सीधे, और आप ये नहीं कहते ओ ये वाला ठीक नहीं है, आप बस उसे देखते हैं, आप उसे होने देते हैं।
जैसे ही आप इंसानों के पास आते हैं आप वो सब खो देते हैं और अब लगातार कह रहे होते हैं तुम बहुत ऐसे हो या मैं बहुत वैसा हूँ, वो निर्णय करने वाला मन आ जाता है।
कितनी सरलता से ये हमारी आंकने की आदत पर चोट करता है।
क्या हम इंसानों को भी उसी सहज स्वीकृति से देख सकते हैं जैसे प्रकृति को देखते हैं? ये सवाल है।
तो इन सब बातों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? ये बड़ा सवाल है।
हाँ, एक तरीका है दैनिक कामों में सचेत रहना, जैसे सुबह की चाय पीते हुए।
सिर्फ चाय पर ध्यान देना, उसकी गर्माहट, स्वाद, कप का हाथ में स्पर्श।
बिल्कुल, बिना अगली मीटिंग या दिन भर के कामों की लिस्ट सोचे साधारण काम भी ध्यान बन सकता है।
और भावनाओं को साक्षी भाव से देखना। ये कैसे करें?
जब तेज भावनाएं उठें, गुस्सा, डर, उदासी, तो उनमें बह जाने या उन्हें दबाने की बजाय एक कदम पीछे हटकर उन्हें देखने का अभ्यास करें।
जैसे खुद से कहें, हाँ अभी मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है।
हाँ, ऐसा करने से भावना की पकड़ ढीली पड़ती है और हम ज्यादा समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाते हैं।
चुनौतियों को सीखने के अवसर की तरह देखना।
हाँ,
जब कुछ गलत हो जाए
या मुश्किल आए तो खुद से पूछें, ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है, मेरा कौन सा डर या मोह सामने आ रहा है।
ये हमें पीड़ित महसूस करने से बचाता है और विकास का रास्ता खोलता है।
रिश्तों में पूरी तरह मौजूद रहना ये बहुत जरूरी है।
किसी से बात करते समय सच में सुनना, अपना फोन दूर रखकर,
अपने दिमाग में चल रही बातों को शांत करके सामने वाले को अपना पूरा ध्यान देना, इससे रिश्ते गहरे होते हैं।
चिंता को वर्तमान में लाकर कम करना, ये कैसे हो सकता है?
जब मन भविष्य की चिंताओं में उलझे, क्या होगा अगर मैं, तो ध्यान वापस अपनी सांस पर ले आए
या अपने पैरों के जमीन पर होने के एहसास पर।
हाँ, ये हमें अभी की सुरक्षा में वापस लाता है जहाँ वो काल्पनिक डर मौजूद नहीं होते।
और करुणा का अभ्यास करना।
हाँ, दूसरों को सिर्फ उनकी भूमिकाओं या गलतियों से नहीं बल्कि साथी यात्रियों की तरह देखना, जो अपनी यात्रा पर हैं, अपनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं।
ये हमें ज्यादा सहानुभूतिपूर्ण और कम जजमेंटल बनाता है।
तो मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि जिस आज़ादी और शांति की हम तलाश करते हैं
वो कहीं बाहर या भविष्य में नहीं है।
नहीं, बल्कि यहीं इसी पल में मौजूद है। बस हमें अपने मन के शोर को थोड़ा शांत करके उसे सुनना सीखना है।
हमारी असली पहचान ये भागता दौड़ता सोचता विचारता मन नहीं,
बल्कि इसके पीछे की शांत प्रेमपूर्ण जागरूकता है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात ये समझना है कि जीवन, खासकर इसकी मुश्किलें, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए है।
हाँ, ये एक पाठ्यक्रम है हमारे आध्यात्मिक विकास का।
बी है नाउ हमें लगातार कुछ बनने या पाने की कोशिश छोड़ने और बस होने की इजाजत देती है।
बिल्कुल, ये वाकई पश्चिम के सवाल और पूर्व के जवाब का एक अद्भुत संगम है
और आज भी उतना ही ताजा और जरूरी लगता है।
एकदम
सचमुच। और शायद सोचने वाली बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार ध्यान खींचने वाली दुनिया में क्या सच में हर पल यहाँ और अभी रहना संभव है?
अच्छा सवाल है।
या ये एक आदर्श है जिसकी ओर हम बस थोड़ा थोड़ा बढ़ सकते हैं? ये सवाल शायद हर किसी को अपने लिए खोजना होगा।
शायद हाँ। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।